ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, अपनी स्थिति बनाने के लिए एक तो अमृत वेला का योग, पावरफुल योग अमृत वेला का, और दूसरा आपसी मतभेद इसे मुक्त। जो बाबा ने कुछ दिन पहले एक मैसेज भेजा था, बाबा ने कहा कि बच्चे अभी ये अंतिम वर्ष, वैसे तो बाबा ने तो बताया था कि पुरुषार्थ के लिए अंतिम वर्ष है, तो इसलिए तीन बातें बताई थी उसमें, एक तो अमृत वाला पावरफुल करो, आपसी मतभेद मिटाओ, और तीसरा स्टॉक का बाबा ने बताया था, चाहे स्थूल स्टॉक चाहिए स्थिति का स्टॉक, खजानों का स्टॉक, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अमृत वेला बहुत ही महत्व का वेला होता है, क्योंकि अमृत वेला जितना हम करते हैं उतनी हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली सारा दिन अशरीरी स्थिति रहती है, आत्मिक स्थिति रहती है। और वैसे अभी बाबा तो अव्यक्त से हमें आकर के व्यक्त में मिलता था, लेकिन बीच बीच में बाबा कई बार कहते थे कि आखिर मैं भी यहां इसीलिए आता हूं क्योंकि आप लोगों को व्यक्त से कहां आना है, अव्यक्त में। तो आखिर बाबा कहते थे कब तक मैं आता रहूंगा, इसीलिए अभी आप लोग भी आओ। तो हमें व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए स्थिति क्या चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए। इस व्यक्त शरीर में रहते हुए भी सारा दिन अशरीरी का भान चाहिए। अगर अशरीरी का भान है तो हमें व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं, अव्यक्त मिलन भी कर सकते हैं। इस व्यक्त की बातों को देखते हुए, सुनते हुए, इन सब बातों के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा जब अशरीरी स्थिति में रहती है, ना कोई उसको व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, ना कोई वस्तु आकर्षित कर सकती है, ना कोई विकार, ना कोई संस्कार आकर्षित कर सकता है। लेकिन व्यक्त में रहते भी वो अशरीरी स्थिति बनी रहे, आत्मा का बना रहे, उसके लिए अमृत वेला का योग जरूरी है। वैसे अभी भी बाबा की मुरली चली, कारणों का क्या करो, निवारण। कारण वही लगा सकता है जिसके अंदर देह का भान है, ये कारण हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वाला उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, जब ये सुख मिल जाता है वो कोई कारण नहीं लगाएगा, उसका निवारण करेगा। लेकिन देहाभिमान वाला छोटी सी बात को, जिसको बाबा कहते ना राय को भी पहाड़ बनाएगा। इसलिए अपनी स्थिति अव्यक्त बना कर रखने के लिए, अशरीरी बनने के लिए अमृत वेला का योग जरूरी है, अमृत वेला का योग पावरफुल चाहिए। इसलिए खास बाबा ने इस वर्ष में ये अमृत वेला का मैसेज भेजा है। अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए जो सारा दिन हमारी खिटपिट आपस में चलती है, क्योंकि आपस में अगर मतभेद होगा तो दोष देखते रहेंगे सारा दिन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, पर चिंतन, पर दर्शन, फिर वो परदर्शन पर चिंतन ही सारा दिन किए हैं तो अमृत वेला भी अच्छी नहीं होगी। जब अमृत वेला अच्छी नहीं होगी तो हमारा सूक्ष्म खजाना का स्टॉक कैसा बनेगा, हम एवर रेडी कैसे बन सकते हैं। इसलिए तीन बातों का विशेष ध्यान, और उसमें से भी अमृत वेला का योग, और साथ में मतभेद को हमें मिटाना है, तब हम जो एवरेडी स्थिति जो हमें मंजिल तक पहुंचना है। ये तो कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। हम किसी लिए आए हैं? आए हैं अपना परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए अगर हम अमृत वेला अच्छी तरह करते हैं तो सारा दिन हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, और जब अशरीरी स्थिति में हैं सारा दिन इस दुनिया में रहते हुए भी यहाँ के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। जब हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली गुण और शक्ति आती है। वास्तव में अशरीरी स्थिति में रहने से ही हमारे पास सहन शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, दैवी गुण भी आएंगे, और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है वो विजयी बनता है। लेकिन वो ऐसी मेरी नेचुरल अशरीरी स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमें रोज क्या करना है, अमृत वेला को पावरफुल करना है। वैसे तो अमृत वेला सभी करते तो होंगे, कौन कौन करता है वो हाथ खड़ा करो। वाह बहुत अच्छा, उठते तो है बहुत अच्छा, इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन वो अमृत वेला का कोई आपको वीडियो बना करके 10 बजे दिखाया जाए, ये आपका सवेरे का अमृत वेला का योग, आप कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसा किया था? कोई दीवार के सहारे बैठा है, मुंह खोला है, दो बार मच्छर अंदर भी गया बाहर भी आया, ऐसा तो नहीं होता। उठे तो सही, लेकिन उठ करके कैसे बैठते वो जरूरी है। आंखें बंद है, जैसे कोई मेहमान को बुलाते हैं घर में, आप 10 बजे 11 बजे हमारे घर में आओ, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन आपके प्यार के खातिर वो आया, कई काम छोड़ के आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके चुपचाप सो जाओ, वो बेल बजा रहे, गेट बजा रहे, दरवाजा ही नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? उसको कई काम है, वो चला जाएगा। फिर आधे रास्ते में फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, गेट भी बजाया था, अपने दरवाजे नहीं खोल, नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आ गया, फिर कुछ समय के बाद फिर दरवाजा बंद कर दिया, उठे ही नहीं। फिर दोबारा भी फोन किया, वो कहेगा मैं आया था, दरवाजा बजाया था, बेल बजाई थी, आप आए, उठे ही नहीं, आप तो अंदर ही थे। दोबारा कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए हम भी अमृत तला उठ करके क्या करते हैं, बाबा को मीठे बाबा प्यारे बाबा आप आ जाओ, हमसे बातें करनी है करनी है करनी है करनी है। अब बाबा को तो बुलाए तो प्यार से बुलाए तो वो आ ही जाता है, लेकिन आपका तो दरवाजा खिड़की दोनों भी बंद हो गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। फिर अचानक नींद खुल जाते, फिर कहेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा, फिर बाबा तो वापिस देखता है, फिर बुला रहे हैं, क्योंकि बाबा एक है, उसको बुलाने वाले बहुत है, जो जितना प्यार से बुलाएगा उधर चला जाता है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद कर दे। इसलिए आंखें खोल करके बैठना पहले तो, और केवल ये स्थूल आंखें नहीं लेकिन बुद्धि रूपी आंख भी खोल करके बैठना है। और केवल आंखें खोल करके भी नहीं, जैसे कोई घर में मेहमान आया सामने बैठा है और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहते हैं फोन क्यों किया बताओ ना, चुपचाप उसके चेहरे की तरफ। तो इसलिए कई भाई बहन क्या करेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे आधा घंटा तक, बस उनको लगता है ये मेरा योगी हो रहा है। लेकिन नहीं, उसे बातें करो, अच्छी अच्छी नशे वाली बातें करो, मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कहां हम थे, आपने इतना मेरे गांव में आकर के मुझे अपना संदेश दिया, और मुझे तो आप स्वर्ग की बादशाही दे रहे, मीठे 21 जन्म की मैं राजा ही दे रहे। कितनी अच्छी अच्छी, जितनी बातें अच्छी करेंगे उतना आपको नशा चढ़ेगी, स्मृति का स्विच चालू करो, और जितना स्मृति गहरी उतना योग गहरा, और जितनी स्मृति गहरी उतना आपका वो चार्जिंग अच्छी तरह हो जाएगा, आपके अंदर वो ताकत आएगी, बल आएगी, योग में नशा भी नहीं, नशा चढ़ेगी, योग में नींद भी नहीं आएगी। और ऐसा योग करने से वो हमारी अशरीरी स्थिति बनी रहती है, तब सारा दिन कारणों का निवारण कर सकेंगे, देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी, सबके गुण दिखाई पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने ये शब्द यूज किया कि अमृत वेला को कैसे करो पावरफुल, नेमिनाथ बन करके उठो नहीं, लेकिन उठ करके वो कैसे बैठते हैं वो चेक करो। और जैसे ट्रेन जब स्टेशन से चलती है उस समय मेहनत लगती है, फिर बाद में तो स्पीड पकड़ लेती है, इसी तरह अमृत वेला जिसने अपने आप को पावरफुल बनाया, थोड़ी मेहनत की, आलस आलबेलापन का त्याग किया, नींद का त्याग किया, थोड़ा सा अच्छी तरह अलर्ट होकर के बैठे, तो सारा दिन आपकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन दौड़ेगी, क्योंकि आगे चल करके हमको मनसा सेवा भी करनी है। ये स्थूल सेवा तो धीरे धीरे बंद होगी, ऐसे सिचुएशन आएंगे कहीं जा भी नहीं सकेंगे, लेकिन वो कौन कर सकता है जिसकी अमृत वेला पावरफुल है, जिसकी स्थिति अशरीरी है वो मनसा सेवा भी कर सकता है। अशरीरी स्थिति अगर है तो सारा दिन आप वाइब्रेशन फैला सकेंगे, अपनी अवस्था अच्छी बना सकेंगे, इतना नहीं आगे चल करके विकारों के प्रकोप बढ़ने वाले हैं। ऐसे ऐसे साधन साइंस के निकल रहे, क्योंकि माया भी अपना जोर लगा रहे हैं, जैसा अंतिम समय आ रहे हैं माया भी जोर लगा रहे हैं, ऐसे साधन निकलेंगे, ऐसा वायुमंडल बनेगा, हमारे पुराने संस्कार भी जागृत हो जाएंगे, लेकिन ऐसे समय पर हमारी स्थिति मजबूत होना जरूरी है। और स्थिति को मजबूत बनाने का आधार है अमृत वेला का योग। इसीलिए हमें अमृत वेला चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला का योग पावरफुल बनाना है। इतना ही नहीं, अमृत वेला योग अगर हमारा पावरफुल है तो सारा दिन हम अपने इंद्रियों को अपने वश रख सकते हैं, हम अपने आसन पर बैठ करके इंद्रियों पर इंद्रियों को शासन पर चला सकते हैं। और जिसकी संगम युग में इंद्रिया शासन पर है वो भविष्य का राजा बन सकता है। भविष्य का राजा का आधार है इंद्रियों पर शासन, इंद्रियों के पर शासन करने का आधार है अमृत वेला का योग। इसलिए अमृत वेला का योग का बहुत बड़ा महत्व है। एक सन्यासी था, वो बहुत मशहूर था, तो उस सन्यासी के पास एक व्यक्ति गया, तो राजा था, वो राजा मशहूर था, और सन्यासी के पास गया, जब देखा कि राजा इतना मशहूर क्यों है, उस सन्यासी ने देखा उसको, लेकिन उसकी सारी दिनचर्या देखी, लेकिन उसको पता नहीं चला कि इतना मशहूर क्यों है, लेकिन एक दिनचर्या वो सन्यासी के दिमाग में आई, वो रोज सवेरे, उस राजा की एक विशेषता थी, राजा वो रोज सवेरे जल्दी उठता है और उठ करके हरे के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हैं, उनकी सबकी चेकिंग करता है। और राजा अलर्ट होने के कारण उसके मंत्री प्रजा सब अलर्ट थे, और इसीलिए वो राजा कैसा था, मशहूर था। उस सन्यासी के मन में वो नोट किया उसकी बात, कुछ समय के बाद क्या पता चला वो सन्यासी कंगाल हो गया, तो उसको लगा ये कैसे हो सकता है। दोबारा वो गया सन्यासी उसके पास, उस राजे के पास, उसकी उस सारी दिनचर्या देखी, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात उसने नोट की, पहले जब वो आया था उस समय क्या देखा था, और राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, हरेक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या, इसके कारण उसके राजा में सब अलर्ट थे। लेकिन जब दोबारा देखा, क्या देखा, राजा आराम से सोया पड़ा है। राजा सोने के कारण उसके मंत्री भी इधर का माल उधर कर रहे हैं, प्रजा भी आपस में, तब समझ में आया कि ये राजा अलसी हो गया, इसके कारण प्रॉब्लम आ गया। अब सन्यासी को लगता अब राजा को कैसे अलर्ट बनाया जाए, तो राजा जाकर के, वो सन्यासी जाकर के राजा को एक बात सुनाता है, कहता राजन आपके इस महल के पास में मैंने एक हंस को देखा है। कहता जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो सकता है। कहता है मुझे भी मशहूर होना है, कहता हंस को देखना पड़ेगा। कहता ठीक है, लेकिन कहा कि राजन वो जल्दी आता है सवेरे सवेरे। कहता ठीक है, मैं पहले उठता था ना, उठूंगा। तो राजा जब हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है, रोज की तरह चोर आए थे, चोर आकर के इधर का माल उधर करते थे, मंत्री इधर का माल। तो जब राजा उठने के कारण चक्कर लगाते समय चोरों ने देखा, अरे राजा तो उठा हुआ है, वो भाग गए। दोबारा दूसरी दिन आए, फिर चक्कर लगा रहा था। तो रोज राजा उठना शुरू करता है, चोर आते हैं, देख के चले जाते हैं। चोरों ने आना बंद किया, मंत्री अलर्ट हो गया, प्रजा अलर्ट हो गई। दोबारा वो सन्यासी आया, कहता है आपने हंस को देखा? कहते हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई अभी अच्छी हो गई। कहता है यही मैंने आपको युक्ति बताई, अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते इसलिए ऐसा होता है, आप मेरा सिर काटते। कहते आपको क्या लेना देना, सो जाए कुछ हो जाए। तो राजा सन्यासी ने कहा इसे आप रोज उठा करो, आपकी राजाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कहानी हमारी अपनी है। तो संगम, हम भी सत्युग त्रेता के राजा थे, मशहूर थे, अभी भी वहां के राजा ही मशहूर है। क्यों? आत्मा राजा जागृत था, धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, अलस अलबेलापन वश होकर गया। तो उसी हमारे शरीर पी महल में क्या हो गए, पांच चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह, कंगाल हो गए पूरा। तो बाबा जैसे सन्यासी आता है, बाबा ऊपर से आया, बाबा ने देखा ये राजा इतने अच्छे थे, तो बाबा ने भी एक युक्ति बताई। जैसे वो सन्यासी ने क्या युक्ति बताई, आपके महल के पास एक हंस आता है, तो बाबा भी कहता है आपके महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन कितना बजे, सवेरे सवेरे, तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर बाबा को देखने के लिए उठेंगे, बाबा से बात करेंगे, तो चोर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अमृत वाला उठने से हमारी अवस्था क्या हो जाएगी, अशरीरी बनेगी, और जिसकी अशरीरी स्थिति बनेगी ये काम क्रोध विकार नहीं आएंगे, और इससे फिर से हमारी राजा क्या हो जाएगी, जैसे पहली थी वैसी बन जाएगी, मशहूर हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें राजाएं लेनी है तो अमृत वेले के ऊपर ध्यान चलो। बात चल रही थी, अमृत वेला योग करने से हम भविष्य के राजाई प्राप्त कर सकते हैं। अमृत वाला योग जब करते हैं पावरफुल, इससे हमारी अशरीरी स्थिति बनती है, क्योंकि हमारा टोटल ज्ञान का सारा है अशरीरी बनना। चाहे हम धारणा करते हैं, योग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं अशरीरी बनने के लिए, लेकिन अशरीरी का सहज अनुभव करना है, अमृत वाला योग हमें अलर्ट होकर के करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे पास आता हूं अमृत वेला, तो बाबा दिखाई पड़ता है, हर एक के घर में आता है एक सेकंड के लिए, जहां बाबा के बच्चे बाबा दर आता है। लेकिन बाबा को देखने के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे, टिके रहेंगे, तो बाबा आपको दृष्टि देके जाएगा। अगर आपके आंखें बंद हैं, पता भी नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा रहता है, कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो और जाकर घर में सो जाओ, वो क्या बोलता है? गटर में गिरा हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? मैं तो राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो गिराए गटर में और क्या समझता है? क्योंकि शराब की नशे हैं। इसी तरह जिसको निद्रा की नशे हैं, बाबा भी अमृत वाला आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, वरदानों का झोला लेके आता है, लेकिन हमें वो नशे होते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। नशे में झूमते, कई तो दिन में झूमते हैं, अमृत वाला की बात ही अलग। जिसको निद्रा की नशे हैं उसकी स्थिति कैसी बनेगी? फिर सारा दिन संस्कार, कारण, समस्या, प्रॉब्लम, इतनी मुरली सुनते तो भी समस्या ही समस्या, ये जीवन बहुत कठिन लगेगा ब्राह्मण जीवन। और जो अमृत वेला करता है उसके लिए कुछ भी नहीं, इतना जीवन सरल। ये हमारा पहला जन्म है, इसलिए अमृत वेला योग 1 घंटे का अगर हम अच्छा करते हैं, सारा दिन पुरुषार्थ रूपी गाड़ी तेज चलेगी, ईश्वरीय नियम और मर्यादा के पटरी पर चलेगी, अंदर जो पुराने संस्कार हैं वो दब जाएंगे, एक्टिविटी में नहीं आएंगे। अमृत वाला ढीली होगी तो संस्कार का फोर्स, संस्कार आपको कहीं भी खींच के लेके जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जैसे वो दिखाते हैं ना महाभारत में, एक ऋषि आता है, दृष्टि देता है, तो जो धृतराष्ट्र उसकी माँ, फिर पांडव की माँ, तो जब दृष्टि देते उस समय एक ने क्या किया, आंखें बंद की, तो बच्चा कैसा पैदा हुआ? अंधा। तो उसको कहा कि नहीं नहीं दोबारा चांस दो, दोबारा चांस दिया, उसको समझाया कि आंखें बंद नहीं करना, लेकिन वो दृष्टि लेने पे घबरा गई, तो कैसा हुआ? कमजोर। फिर कहा कि और एक बार चांस दो, लेकिन दोनों भी गिने गए, एक दासी पुत्री को भेज दिया, बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन कैसा। तो इसी तरह ये संगम की बात है, बाबा अब नई सृष्टि बना रहे हैं, ये सृष्टि खत्म होगी उसके बाद। अगर हमने ये कल्प की, पूरी कल्प की बात है, अगर यहां बाबा की बाबा दृष्टि दे रहे हैं और आंखें बंद करेंगे तो कैसे पैदा होंगे? अंधा अर्थात पता ही कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए तो भी कर लेंगे, ज्ञान है समझ है तो भी, ताकत नहीं है, वो ताकत कहां से आएगी? योग करेंगे। इसीलिए उसी समय हमें कैसे बैठना है? आंखें खोल करके बैठना है, अलर्ट होकर के बैठना है, उस समय नींद नहीं करना है। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब वो झुटका लगा दे यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसी तरह अमृत वाला बाबा लिखता है, बच्चे कुछ 21 जन्मों की राजा ही लिखता है, एक एक जन्म की आपकी राजा ही लिख रहा है, आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन उस समय आप नींद करेंगे तो कैसा लिखेगा? इसीलिए कहावत भी बने ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहा था सो रहे थे क्या? बच्चे के चेहरे, माँ श्रृंगार करते हैं, बच्चा हलचल करता है, माँ थप्पड़ मारते, ठीक नहीं रह सकते हो। इसीलिए हमें अमृत वेले के समय अच्छे अच्छे विचार सामने बाबा, जैसे रात को ट्रेन चलती है, अब ट्रेन चलते समय चाय वाला चाय 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 करके झुटका थोड़ी लगाता है। अब उसको अगर फटी हुई नोट देंगे तो ऐसा देखता है, दो तीन बजे भी कहते ये चलेंगे नहीं, दूसरी दो, क्योंकि उसको नशा है कि ये ट्रेन पास होगी तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर हम अमृत वाला अलर्ट होकर के करेंगे तो एक जन्म की राजाई मिलेगी, वो राजाई को सामने रखो तो नींद नहीं आएगी। इसलिए हमें अमृत वेले को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, सारी हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अमृत वेला करने से अशरीरी स्थिति बन जाती है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको किसी के अंदर कोई कमियां दिखती नहीं है, सब कुछ अच्छा दिखता है, वो कोई कारण इतना ही नहीं, उसका मन चुप रहेगा। जिसका मन चुप रहता है उसका मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है। इसलिए अगर एवरेडी बनना है, फरिश्ता बनना है, मंजिल तक पहुंचना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, तो हमें अमृत वेला को क्या करना है, पावरफुल बनाना है। जिसकी अमृत वेला पावरफुल है, रात को सोया है तो भी उसका समय सफल हो रहा है, क्योंकि अशरीरी स्थिति है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, बाबा जब सोते थे, कहीं को लगता था बाबा कैसे सोया है वो हमको देखना है, तो कई कहते नहीं जाना, कई कहते नहीं हम चप्पल यहां उतर करके धीरे जाएंगे, बाबा की नींद नहीं खुलेगी। तो जब बाबा के नजदीक जाते थे, बाबा को के पास कितना बजे जाए, रात को 12 बजे 1 बजे, बाबा कहता था आओ बच्चे आओ। ये अशरीरी स्थिति की नींद। और हमारी स्थिति, हम ऐसे सो जाते हैं वो खटिया पर उठा, खटिया को कोई उठा करके साइड पे रखेगा तो भी पता नहीं चलेगा, देहभान वाली नींद। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जागृत अवस्था में, इसके लिए अमृत वेला का हमें क्या करना है, योग पावरफुल करना है। एक भाई ने मुझे कहा, भाई साहब मैं अमृत वेला उठ नहीं सकता हूं। हमने कहा अलार्म वगैरह लगाया करो आजकल मोबाइल में, कहता अलार्म मुझे सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म बेड पर बसता है, बहुत लंबा डिस्टेंस है इसीलिए सुनाई नहीं। देखो कितना होशियार भाई बहन होते हैं, कितना सोचते हैं। हमने कहा आप वास्तव में परमधाम में नहीं जाते हैं, क्योंकि धाम तो बहुत है, निद्रा लोग स्वप्न लोग कई लोग है। अब कोई निद्रा लोग में अच्छी अच्छी सीनरी देखेगा उसको घड़ी कहां सुनाई पड़ेगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था एक बार भट्टी में, कही कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूं लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों, कहते हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है उस समय। तो अंधेरे में आत्मा को थोड़ी कोई पकड़ेगा, वे अकेले जा रहे तो पकड़ थोड़ी लेगा। तो इसलिए अमृत वेला पावरफुल करने के लिए रात को सोने से पहले योग करके सोना, अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। जितना सोने के पहले एक अव्यक्त वाणी पढ़ो, कुछ अच्छा अच्छा चिंतन करके सो जाओ। जैसे कहीं जाना होता है रात को, आपको 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे बार बार सोचते कि कल सवेरे उठना है, टिफिन भी बनाना है, फिर ये भी करना है, बार बार नींद खुलेगी आपकी, क्यों सोच करके सोए। इसी तरह अमृत वेला मुझे उठना है, जितना बार बार सोचेंगे आपकी नींद खुलेगी। नहीं तो सवेरे सवेरे कौन आता है, बाबा तो आता है लेकिन माया के तरफ से कौन आता है, आलस और अलबेलापन। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। आलस आता है, बहुत मीठा बोलेगा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सो जाओ, रात को देरी से सोएंगे, मच्छर काटे थे, हाँ बहुत मीठा मीठा बोल करके सुलाएगा। और आलस सुलाएगा तो बाकी सब, जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, बाकी सैनिक सब पीछे थे, उन्होंने चक्र बनाया था और उस चक्र के बीच में डाल करके उसको मार दिया बेमौत। इसी तरह माया भी हमें रोज कोई ना कोई चक्र भी बनाती है और उसके लिए किसको भेजते हैं, आलस को, कहे कि तुम सुला दो, बाकी मारने का काम हम देख लेंगे। तो आलस बहुत दोस्त बन करके आता है, सो जाओ ये करो। अगर अमृत विलाप की ढीली है तो फिर काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, सब मिल करके खत्म कर देंगे। इसीलिए हमें उठते ही किसका खून करो, आलस और अलबेलापन का। और जितना आलस और अलबेलापन को मारेंगे बाकी विकार भी आपके पास नहीं आएंगे। तो इस वर्ष का एक एक दिन का अमृत वेला इतना अच्छा पावरफुल करो जो सारा दिन आपकी अव्यक्त स्थिति बनी रहे, आत्मिक स्थिति बनी रहे। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसकी अवस्था अच्छी है, उसकी स्थिति अच्छी है, उसके अंदर दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे, दैवी संस्कार दिखाई पड़ेंगे, देवताओं के समान आपकी चाल चलन होगी, वो भाव स्वभाव में नहीं आएंगे, उसको सबके गुण दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए रात को सोने से पहले थोड़ा सा योग करके फिर सोना है, तब अमृत सवेरे का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले की मुरली और क्लास के पहले का योग, ये तीन बातें हैं, तब आपकी अवस्था अच्छी है, तब अंतिम समय के लिए हम तैयार रहेंगे। क्योंकि अंतिम समय की सीनरी देखने के लिए स्थिति कौन सी चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, नहीं तो उस समय भी हम चिल्लाएंगे, दर्द होगा। और यही धर्मराज की सजा है, जिन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया उसको वो सजा अनुभव होगी। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे वैसे ही विकर्म भी विनाश होते हैं और हमारा बाबा के साथ भी लिंक बनी रहती है, कर्म योगी की स्थिति बनी रहती है। जितना अमृत वाला योग करेंगे सारा दिन आपकी कर्म योगी की अवस्था बनी रहेगी। तो एक एक दिन की अमृत वाला में क्या करना है, पावरफुल बनाना है। और उसके लिए बाबा ने कहा वर्तमान समय आपस के जो मतभेद है उसको हमें, आजकल ब्राह्मणों में मतभेद क्यों होता है, उसका कारण है एक तो अभिमान, अभिमान के कारण मतभेद होता है। मतभेद होने का कारण दूसरा है अवगुण वाली दृष्टि। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, तब हमारे मतभेद होते हैं, फिर वो बातें भी हम झगमुई करेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, तो फिर अमृत वाला कैसे अच्छी होगी। इसीलिए सारा दिन हमें दूसरे के क्या करना है, गुण देखनी है, विशेषता देखनी है। बाबा कहते बच्चे तुम हंस हो, होली हंस। हंस क्या करता है, मोती चुगता है, कंकड़ को छोड़ देता है। इसीलिए बाबा ने जैसे हर ब्राह्मण को चुना है, कैसे चुना है, गुण देख करके चुना हुआ है। इसी तरह में और जितना सबके गुण देखेंगे उतना ज्ञान की मुरली हमारे बुद्धि में रहेगी। अगर हमारा मतभेद होगा पर चिंतन करते रहेंगे, अवगुण देखते रहेंगे, तो बाबा की मुरली के पॉइंट बुद्धि में नहीं रहेंगे। जैसे सरस्वती किस पंछी के ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ, कोई बहन या भाई सामने नहीं है और दो चार जन मिलकर के पीछे बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये है, वो है। और अचानक आई तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे हाँ भैया हम आपको याद करे थे, ओम शांति, मुख में राम बगल में चूरी। उसके बुद्धि में ज्ञान कैसा बैठेगा। और जिसके बुद्धि में सरस्वती नहीं, ज्ञान नहीं, तो भविष्य में लक्ष्मी भी उसके पास नहीं आएगी। वर्तमान समय वो संतुष्ट भी नहीं रह सकता। खजाने से भरपूर, बाबा ने कहा ना, खजाने से संपन्न बनू, कौन रह सकता है? जिसके पास सबसे पहले ज्ञान का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, वो कब रहेगा? जब हम गुण देखेंगे, सबकी विशेषता देखेंगे, क्योंकि अवगुणों का ही चिंतन चलेंगे तो मुरली का जो पॉजिटिव इतना नशे की बातें वो नहीं चलती। इसलिए आपस के मतभेद से हमें इस वर्ष में अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि संगम का 2018 का वर्ष, उसके भी अभी कितने महीने चले गए, 3 महीना पूरा हुआ है, चौथा चालू है, तो इसलिए एक एक दिन हमें क्या करना है, सफल करना है, पर चिंतन करके अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस वर्ष में हमें अपनी स्थिति को बनानी है, और स्थिति को बनाने के लिए पर चिंतन, पर दर्शन, अगर कोई आकर के किसी के सुनाता भी है तो भी उसको सुनना नहीं है। क्यों सुनाता है? हम कान आगे करके अच्छे कहते हैं, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे तो कहेंगे बैठो ना, चाय पी के जाओ ना बैठ, और खास तो माता ही थोड़ी ज्यादा सुनती है ना, माता ही तो इसे सहन तो बहुत करती है, लेकिन जो घर की बातें सहन की वो पेट तक नहीं रखेंगे, अपने तक नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, पड़ोसी को जरूर सुनाएंगे, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बातें नहीं ठहरती। इसलिए ये माताओं की कमजोरी का फायदा बाबा ने लिया है, इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है, माताओं को। क्यों दिया है? क्योंकि बाबा को पता है माताओं को ज्ञान सुनाएंगे तो माताओं के पेट में ठहरेगा ही नहीं, सबको सुनाएंगे। इसलिए माताओं की संख्या ज्यादा है, क्यों, सबको सुनाएंगे, अरे वहां ऐसा है, हमने सुन के है, ये सुन के है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें तो भले सुनाओ कोई बात नहीं, लेकिन व्यर्थ बातें अभी हमें ना सुननी है ना सुनानी है। ऐसे नहीं कि भाई भी पर चिंतन नहीं करते, भाई भी करते हैं, लेकिन माता ही थोड़ा ज्यादा टाइम, क्योंकि माता ही सहन करती है, उस समय तो कोई उल्टा जवाब नहीं देंगे, पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी, लेकिन फिर बाद में पानी भरने के लिए जाएगी या कोई बहाने जाएंगी, पड़ोसनी को सब बातें सुनाएगी। माताओं का ज्यादा टाइम इसमें जाता है, और जितना उसका चिंतन करेंगे फिर आपस में क्या हो जाएगा, मतभेद बनेगा, क्योंकि परचिंतन करने से आप जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वैर पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, फिर वो बातें वृत्ति में गई, और एक बार किसी के लिए वृत्ति नेगेटिव बन गई, उसको देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, थॉट चलना शुरू हो जाएगा, तो ज्ञान बाजू में रह गया। अगर कोई उसकी महिमा भी करेंगे, कहेंगे उसकी महिमा करें, हमको पता वो कैसा है, उसकी महिमा भी सुन नहीं पाएंगे, उसे किनारा करेंगे, शुरू हो गया। और एक व्यक्ति के प्रति अगर अंदर दिल में भरा हुआ ऐसा नेगेटिव, उसके दिल में बाबा कैसा बैठेगा फिर? 18वां अध्याय चल रहा है अभी, हमें जो जन्म जन्मांतर से किसी के प्रति जो वृत्ति खराब किए, दिल खराब किए, उसको ही स्वच्छ करना है। वो स्वच्छ करने के बजाय और ही अगर हम नया कोई किसी के लिए दिल खराब करेंगे तो बाबा दिल में कैसा बैठेगा? हाँ, इसलिए इस वर्ष में सबके लिए माफ कर दो, जिसने भी मेरा बुरा किए हैं, जिसने भी मेरे लिए कोई चुगली किए हैं, जिसने भी मेरे को धोखा दिए हैं, सबको क्या करेंगे, माफ। जब माफ करेंगे तो दिल क्या हो जाएगा, फिर साफ हो जाएगा, और जब दिल साफ हो जाएगा तो कौन बैठेगा दिल में, बाबा बैठेगा। जैसे महाभारत में 3 अपिषेड है, एक है भागवत, दूसरा है गीता, तीसरा है महाभारत, भागवत में कृष्ण कोई गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाता, स्नेह प्यार देता है। जब वो बड़ा होता है तो गोपिकों को के स्नेह प्यार के अंदर नहीं रहता, उनको भी उनसे भी नष्ट मुआ होकर के क्या करता है, वो कुरुक्षेत्र में जाता है। और जिसके लिए उसने अवतार लिया था गीता ज्ञान देने के लिए, तो गीता का ज्ञान अर्जुन को देता है कितना दिन, 18 दिन तक। और जब गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन जब उसके शरण में आता है, सबसे मोह निकालता है, गुरु चाचा मामा, तब उसका सारथी बनता है। और फिर क्या होता है, उसका सारथी बनकर के उसको विजयी बनाता है, ये महाभारत। तो यहां भी तीन एपिसोड होते हैं, एक भागवत, दूसरा गीता, तीसरा महाभारत। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई थी, लेकिन स्नेह प्यार दिया था, उसको कहते भागवत। तो ब्रह्मा बाबा फिर अव्यक्त हो गए, दादी को निमित्त बनाया, गीता का ज्ञान चालू किया, पूरा विश्व में कई सेंटर खोले और गहरी गीता की ज्ञान, 80 वर्षों से 82 वर्षों से गीता का ज्ञान चालू है। और इसका सार क्या है, जो भी हमारे दिल किसी से है, जो भी बुद्धि किसी देहदारी में है, वो सब निकाल करके एक बाबा के शरण में आना है। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन क्या करता है, नष्ट मां नहीं बनता, आखिर क्या करता है, वो अपना रूप दिखाना पड़ता है। इसी तरह आज बाबा इतना तो सुना रहे हैं किसी लिए, नहीं तो कभी हम कहते नहीं ये कैसे करे, ये अरे कौन कह रहा है, यहां कोई बहने नहीं बोल रहे, बाबा बोल रहे हैं। इसीलिए नष्ट मोहा बनो, स्मृति लब्धा बनो, जो भी दिल हमें किसी के लिए खराब किया, सबको माफ करके दिल को स्वच्छ करो, तब क्या हो जाएगा, फिर बाबा सारथी बनेगा। इसीलिए दो तीन साल में बाबा ने जो मुरलियां चलाई, क्या रिपीट किया, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। कब बैठेगा, जब दिल साफ होगा। इसीलिए अब हमें किसी के लिए मतभेद में नहीं आना, क्योंकि अब क्या चालू होने वाला है, महाभारत। अगर महाभारत काल में बाबा मेरे दिल में नहीं है, तो मेरी विजय नहीं होगी, मेरी पराजय होगी। और पराजय वाला सतयुग में नहीं आएगा, वो कहां आएगा, तो कहां आना है हमें, सतयुग में आना है। तो हमें क्या करना है, इस वर्ष में अपने दिल को साफ करो, एक व्यक्ति के प्रति भी मन में निगेटिव बातें ना हो, आपस में कोई मतभेद नहीं है। और जब मतभेद से मुक्त बनेंगे, किसी के अवगुण देखने से दृष्टिकोण निगेटिव, क्योंकि निगेटिव से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, निगेटिव वाला कभी सोमान में नहीं टिक सकता, वो खुश नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता, भरपूर नहीं बन सकता। इसलिए बाबा ने खास इशारा किया कि क्या करो, आपसी मतभेद को मिटाओ, एक बनो, एकता में बल होता है, ताकत होती है। तो इसलिए हमें किसी का कोई अगर ऊपर चिंतन की बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर की विशेषता है, उस विशेषता को देखना है। नहीं तो सारा दिन यही चिंतन में जब चलता है, तो अमृत वाला योग में बैठेंगे, नींद आएगी, अमृत वाला अच्छा नहीं होगा। जब अमृत वाला अच्छा नहीं होगा, तो हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। तो स्थिति आज कईयों को लगता है कि हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि योग लगाने के दो चीजें होती है, एक बुद्धि, दूसरा मन। बुद्धि कैसी चाहिए, सोच चाहिए, और मन कैसा चाहिए, हल्का चाहिए। हल्का मन ऊपर जाता है, जिसका मन भारी है, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको जाएगा, लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा। तो जिसका सारा दिन निगेटिव का चिंतन करके मन भारी है, तो भारी मन कैसे जाएगा। और बुद्धि कैसी चाहिए, सोच। अगर बुद्धि मलिन है, जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह सारा दिन निगेटिव का चिंतन किया है तो उस बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। और वर्तमान समय माया जो अटैक कर रहे हैं ये दो के ऊपर, मन और बुद्धि के ऊपर, और जिसकी मन बुद्धि के ऊपर अटैक हुआ है सारा दिन उसका अमृत वाला ढीला ढाला ब्राह्मण है, चल रहे बस, एक एक दिन काट रहे। जो आनंद लेना चाहिए ब्राह्मण जीवन का वो नहीं आ रहे, प्रभु मिलन का सुख नहीं होगा, मिलेगा नहीं। इसलिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, अशरीरी का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, सारा दिन ये व्यर्थ चिंतन पर चिंतन इससे मुक्त होकर के इस वर्ष में अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है। तब जो ओरिजिनल हमारी स्थिति है अशरीरी की स्थिति, जिसको बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विदेही अवस्था का अनुभव करो, क्योंकि इसके बिना हम देवता के संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे। अगर देवता बनना है, देवता बनना है तो उसके लिए अशरीरी स्थिति जरूरी है, और अशरीरी स्थिति का आधार है योग। हमें बीच बीच में केवल अमृत वाला की बात नहीं, लेकिन नुमा श्याम के समय भी टाइम निकाल करके योग लगाना है, बीच बीच में भी योग, ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में भी, तो कर्मयोगी की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये क्यों नहीं बनती, उसका कारण है ये व्यर्थ निगेटिव चिंतन। इसलिए इस 2018 में ये विशेष पुरुषार्थ करना है, और कोई भी प्रकार का कारण नहीं लगाना है। कारण का क्या करो, निवारण, समस्याओं का समाधान। समस्या आएंगी लेकिन उसका खुद ही क्या करना है, ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से उसका समाधान करना है। जितना समस्या का चिंतन करेंगे निगेटिव की वो दलदल है और फंसते जाएंगे। इसलिए हमें बिंदी लगाने के लिए बाबा ने जो बोला, बिंदी लगाओ, लेकिन बिंदी कौन लगा सकता है, जो बिंदी स्वरूप में टिकता है, जिसके पास ज्ञान के अनेक बिंदु हैं, वही बिंदु लगा सकता है। अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं, देहबान में है, तो क्वेश्चन करते रहेंगे कैसे, ये क्यों, मैं तो इसके रास्ते में गया ही नहीं, मैंने इसका ऐसा किया ही नहीं। इसलिए कार्मिक अकाउंट को याद रखो, जरूर इस जन्म में नहीं गए, कभी ना कभी हम उसके रास्ते में गए हैं, तब जाकर के उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ चाहिए। इसलिए मेरा हिसाब, तो बिंदी लगाएंगे तो मन चुप रहेगा, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे फिर अमृत वेला का योग हमारा बहुत अच्छा होगा। और अमृत वेला का योग हमें सारा दिन अपने आसन पर स्थित कराएगा, सारा दिन आंखें खुली हैं, देखते हुए मैंने देखने की अवस्था बनी रहेगी, हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। हमारे आसपास में गुण और शक्तियां बनी रहेगी, इसलिए इस अवस्था में सारा दिन टिकना है, और उससे हमें सहज ही जो अव्यक्त मिलन की अनुभूति, बाबा जो हमें कुछ अव्यक्त में भी कुछ टचिंग कराएगा, उसकी टचिंग होगी। अंतिम समय के समय कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, उस प्रॉब्लम के समय इशारे कैच करने के लिए हमें क्या करना रहना है, अशरीरी अवस्था में। और इसलिए अभी से हमें रोज की अमृत वाला पावरफुल करना है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। ठीक है, ओम शांति।
Thank you.